पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की वजारत खारजा के दफ्तर ने बताया है कि कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के दौरान 51,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया गया है, जबकि 92,000 से ज्यादा अभी भी वापसी के मुंतजर हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद से बैरूनी ममालिक में 339 पाकिस्तानी वफात पा चुके हैं। इनमें से 55 अफराद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में फौत हुए हैं। पाकिस्तान में सेनेट इजलास के दौरान हुकूमत की तरफ से बताया गया कि कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाले बहरान की वजह से मुल्क में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। इनमें से 10 लाख सनती शोबे और 20 लाख अफराद खिदमात के शोबे से मुंसलिक हैं, जिनकी मुलाजमतें खत्म होने का खदशा है। सेनेट इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स से मुलाजमीन को निकालने के मामले पर भी भरपूर एहतजाज किया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए कवायद व जवाबित पर अमल दरामद न करने वाले बाजारों और बड़ी मार्केटों को बंद करने का फैसला किया है, जिसके तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जिले इंतजामिया ने बाजारों और दुकानों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दूसरी जानब दुकानदार हजरात कहते हैं कि हुकूमत पहली मरतबा दुकानें सील न करे बल्कि उन्हें एक मौका और दे। एक तहकीकी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में थरपारकर में कोयले से बिजली पैदा किए जाने के नए प्लांट्स मुल्क में फजाई आलूदगी में इजाफे का बायस बनेंगे, जिससे करीबी आबादियों में सांस के अमराज बढ़ने से आने वाले सालों में हजारों हलाकतें रूनमा हो सकती हैं। ताहम बाज़ माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान जिस खत्ते में वाक़े है वहाँ कोयले से आलूदगी के असरात कम पाए जाते हैं। अफगानिस्तान के जाबल सूबे में अहदेदारों ने बताया है कि शहर सफा जिले में तालिबान ने घात लगाकर हमला किया है, जिसमें कम से कम 15 अफगान पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। जाबल के गवर्नर के एक तर्जमान गुल इस्लाम सयाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि काबुल कंधार शाहरा पर पुलिस के इमदादी काफिले पर तालिबान ने छुप कर हमला किया। उनका कहना था कि यह दस्ता पुलिस की मदद के लिए जा रहा था। इसके अलावा तालिबान के खिलाफ फजाई कार्रवाई भी की गई है। जराए ने बताया कि 12 तालिबान जंगजू भी लड़ाई में हलाक हुए हैं। तालिबान ने इस हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है। अफगानिस्तान से मुलका कबायली जिले शिमाली वजीरिस्तान में घात लगाकर कत्ल के वाकयात में तेजी देखने में आ रही है। घात लगाकर कत्ल के ताजा तरीन वाक़े में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एक तालिब इल्म को मीर अली कस्बे के नवाही गांव में नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। एक रोज कबल स्पिनवाम तहसील में एक सरकर्दा कबायली रहनुमा को भी नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। शिमाली वजीरिस्तान के अलावा दीगर कबायली इलाकों में भी तशद्दुद, दहशतगर्दी और घात लगाकर कत्ल की वारदातें तवातुर से होती रही हैं, जबकि जुनूबी वजीरिस्तान में अमन कमेटी को दी गए इख्तियारात से सियासी जमातों के कारकुन खफा दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 68 मरीज चल बसे हैं, जिसके बाद कुल अमवात 1,838 हो गई हैं। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 86,657 तक पहुंच गई, जिनमें से 30,000 से ज्यादा सेहत याब हो चुके हैं। लाहौर के पब्लिक पार्क्स को आज से आवाम के लिए खोल दिया गया है। भारत में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक भारत में 2,26,770 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, जबकि इस वबा से हलाकतों की तादाद 6,348 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब के तमाम मसाजिद में आज से नमाज जुम्मा के इज्तिमात शुरू हो गए। दुनिया भर में 65 लाख से जायद केसेस और 3,85,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में सियाफाम शख्स जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। जुमेरात को फ्लाइट की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिनमें कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। रियासत मिनिसोटा के शहर मिनापुलिस में फ्लाइट की याद में होने वाली मरकजी तकरीब में उन्हें एक अच्छे बाप और फैमिली मैन के उनवान से याद किया गया। मिनियापुलिस की नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने वाली इस तकरीब में मिनिसोटा की सेनेटर एमी क्लॉपचर और अमरीकी कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान के अलावा कई नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में शरीक लोगों ने जॉर्ज फ्लाइट की याद में 8 मिनट 46 सेकंड की खामोशी इख्तियार की। खबरें खत्म हुई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम जहां रंग के साथ वाशिंगटन से मैं हूं असद हसन। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में हमारा ये खसूसी प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे वाशिंगटन डीसी और अमेरिका भर में मुजाहरे जारी, अपडेट्स लेंगे सारा जमा से, सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुल्क को मुनकसिम करने का इल्ज़ाम, रिपब्लिकन रैंक से भी तनकीद, सियासी मजमरात, रिपब्लिकन से वाबस्ता साजे तारल और डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक जफर ताहिर से गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद के एतबार से चीन से भी आगे निकल गया, क्या खतरा जन्म ले रहा है, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर बैठे तजियाकार क्या सोचते हैं, न्यूयॉर्क से डॉक्टर एजाज अहमद और लाहौर से इसार राणा सीनियर साफी और तजियाकार हमारे साथ होंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
www.voanews.com/urdu
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम वाशिंगटन डीसी में, वैसे तो पूरे अमेरिका में मुख्तलिफ शहरों में जॉर्ज फ्लॉयड उसकी पुलिस की तहवील के दौरान मौत के ऊपर मुजाहरे जारी हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी में जुमेरात को मुसलसल सातवां दिन है। इसके बावजूद के बुध के रोज़ अहम डेवलपमेंट्स हुई थी और जो पुलिस ऑफिसर इसमें मुलविस बताए जाते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की मौत में, उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी कैटेगरी को बढ़ा दिया गया है। अब वो सेकंड डिग्री मर्डर केस के चार्जेस का सामना कर रहे हैं और उसके साथ साथ दीगर तीन पुलिस ऑफिसर जिनको इससे पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था उनको भी इस मुकदमे में शामिल कर लिया गया है और कत्ल में मदद का इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद है। सारा जमा हमारी कोलीग, उन्होंने वाशिंगटन डीसी के मुजाहरों को कवर किया है, उनसे मालूम करते हैं कि प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं, मुजाहरीन क्या चाहते हैं। एक तवक्को तो ये भी थी कि जब ये चार्जेस बढ़ा के उनके मुतालबे के मुताबिक उनको कैटेगरी 2 में लाया गया है शायद ये ख़त्म हो जाते, लेकिन ये सिलसिला इस वक्त तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया है।
जी वाशिंगटन में इस वक्त भी मुजाहरे जारी हैं। एक मुजाहरों की नौयत में थोड़ी सी जो तब्दीली आई वो ये थी कि अब वो मजीद पुरअमन होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते के अख्तितम पर जब फ्राइडे सैटरडे और संडे को प्रोटेस्ट हुए थे तो हंगामा आरआईटी हुई थी, लूटमार भी हुई थी, लेकिन अब उस तरह के वाकयात वाशिंगटन डीसी में तकरीबन ना होने के बराबर है। और जो यहाँ पे पुलिस के चीफ हैं उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि जो मुजाहरा करने वाले हैं वो खुद भी एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश अब ये है बड़ी हद तक के मुजाहरे पुरअमन तरीके से ही हो। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुजाहरीन का मुतालबा एक बड़ा जो था कि इन जो दीगर पुलिस अहलकार हैं इनको भी गिरफ्तार किया जाए, वो मुतालबा तो पूरा हुआ है, लेकिन जब गुजशत रोज कवरेज के दौरान मैंने कुछ मुजाहरीन से बात की और उनसे यही पूछा कि अब मुजाहरा करने की क्या वजह है, तो उनका ये कहना था कि चार्जेज में जो मजीद संजीदगी लाई गई है वो बकौल उनके एक पता है लेकिन एक छोटी फता जरूर है, और अभी जो निज़ाम में जो खामियां वो देखते हैं वो चूंकि दूर नहीं हुई हैं इसलिए वो मुजाहरे अपने जारी रखेंगे, वो अपने एहतजाज जारी रखेंगे। और मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि कब तक ये एहतजाज जारी रह सकता है, तो उनका ये कहना था कि जब मार्टिन लूथर किंग का दौर था 60 की दहाई में जब सिविल राइट्स की मुहिम यहाँ पर उरूज पर थी तो तब तकरीबन एक साल तक एहतजाज होता रहा था, तो मुजाहरीन का ये कहना था कि उनकी उम्मीद ये है कि अब भी कई महीनों तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहे।
सारा आपने बात भी की है, आपने वहाँ पे जाके देखा भी है, ये इनफरादी तौर पे मुतहरिक हैं ये लोग आपके ख्याल में, या इसके पीछे बाकायदा जैसे क़यादत होती है, कोई लीडरशिप भी है इन मुजाहरों को जो मोबिलाइज या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं?
देखिए दोनों ही चीजें हो रही है, लेकिन ज्यादा देखने में यही लगता है कि इनफरादी सतह पे हो रहे हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइज हो रहे हैं, वो जाती तौर पर ये महसूस कर रहे हैं कि वो इस शहर में रहते हैं और उनके शहर में अगर मुजाहरे हो रहे हैं तो वो उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वो भी अपनी आवाज शामिल करना चाहते हैं, तो इस तरह से लोग इंफरादी तौर पर भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइज होके। कुछ जो तंजीमें भी नए शिरकत कर रही हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को साथ लेके आती हैं रोजाना, लेकिन यह कि वो कॉल को उठाती हैं और मुख्तलिफ मौकों पर हम देखते हैं मुजाहरों के दौरान मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो किसी नारे का आगाज करते हैं या किसी स्टेटमेंट का आगाज करते हैं, क्राउड उनको सुनता है, तालियां बजाता है, उनके साथ नारे लगाता है, लेकिन थ्रू आउट द डे मुख्तलिफ लोग आपको मुख्तलिफ किरदार में नजर आते हैं। हमने ये भी देखा कि जब कर्फ्यू के वक्त तीर की शाम को पुलिस ने आगे बढ़ना शुरू किया तो कुछ नौजवानों ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उन्होंने मुजाहरीन से ये दरख्वास्त करनी शुरू कर दी कि अब वो पुलिस उनको जहाँ से हटाना चाह रही है वो वहां से हटें, तो लोगों की खुद भी अपने तौर पर वो कह लीजिए कि इन मुजाहरों के दौरान एक लीडरशिप का रोल अपनाते हैं।
लेकिन लीडरशिप सारा इस रेफरेंस में बहुत अहम हो जाती है कि अगर इंतजामिया किसी से बात करना चाहे तो वो किससे करे, ये सवाल जहन में आता है।
जी इस तरह से इस लिहाज سے دیکھا جائے تو کمیونٹی لیڈر ضرور ہیں جو رابطے کا کام کرتے ہیں. اس میں جو مختلف آرگنائزیشن ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ جن کو ہم سول سوسائٹی کے ارکان کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, وہ جا کے میئر کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں, ان کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ اور اس میں آپ کو چرچز کی لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے, اس میں آپ کو پولیٹیکل گروپس کی لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے, یوتھ گروپس کی لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے. تو مختلف سطح پہ لوگ ہیں جو آپس میں رابطے کھلے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال میں رابطے ہوں اور مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا
ہے. سارا جو کہ یہ بہت اہم دور ہے اس سینس میں بھی کہ ایک تو انتخابات کا سال ہے, دوسرا اس حوالے سے بھی کہ کرونا ہے. اگر انتظامیہ کسی وقت ان کو ڈسپرس کرنا چاہے یا طاقت کا استعمال کرنا چاہے تو ایسے کوئی امکانات ہیں؟ فوج کی تعیناتی کی بات کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے, کیا مزاحمت آ رہی ہے سوسائٹی سے یا ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن سے؟
جی ایک تو اس نے ایکچولی دو تین پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک کرونا وائرس کی وجہ سے اگر لوگوں کو ہٹانے کی بات آتی ہے تو اس کا فیصلہ کم از کم واشنگٹن ڈی سی میں جو میئر ہے میورل داؤر ان کا دفتر وہ فیصلہ لے گا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو بڑی کلیئر طریقے سے یہ گائیڈنس ایشو کرنی پڑے گی کہ یہ مظاہروں کو روکنا جو ہے اس پر کوئی سیاسی وجہ نہیں بلکہ اس کی وجہ جو ہے وہ صحت عامہ کا جو ایشو ہے وہ ہے. تو ایک تو وہ گائیڈنس ان کے دفتر کی طرف سے آئے گی. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی طرف سے مظاہرین کی جانب رویہ یہی ہے کہ جو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ان کا آئینی حق استعمال کرنے کا جو موقع ہے وہ ضرور دیا جائے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ جب واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو کے اوقات منڈے اور ٹیوزڈے کو شام میں جلدی کر دیے گئے, شام 7 بجے کر دیے گئے, لیکن پھر وینسڈے کو شام 7 بجے کے بجائے 12 بجے سے واپس کرفیو لے جایا گیا تاکہ لوگوں کے پاس مزید وقت ہو اپنے اس آئینی حق کو استعمال کرنے کا. تو جو ڈی سی کی لیڈرشپ ہے وہ بہت کیئرفلی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے.
آخری بات سارا سیاسی کہنا چاہیے کہ حلقوں کو کس حد تک اس نے متاثر کیا ہے یا یہ معاملہ کس حد تک پولیٹیسائز ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے؟ جارج فلائڈ کی موت اور ان کی تدفین کے ریفرنس میں کیا اپڈیٹس ہیں؟
جی سب نئے سوال کی طرف آتے ہیں, لیکن فوج کا جو نقطہ آپ نے اٹھایا وہ بہت اہم ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے پچھلے کچھ دنوں کے دوران ٹویٹر پہ بھی اور اپنے جو ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے کیمرا پہ بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگر مختلف ریاستوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے, ریفیوز کر دیتی ہے ایسے اقدامات اٹھانے سے جن سے قانون کی بالادستی قائم ہو, تو پھر وہ فوج کو متحرک کریں گے. لیکن اس پہ بہت ان کو پش بیک کا سامنا ہوا ہے, نہ صرف مخالفین کی جانب سے بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدھ کے روز جمعرات کے روز انفیکٹ دو اہم سابق ملٹری لیڈرز ایڈمرل مائک ملن اور اس کے علاوہ سابق وزیر دفاع جیف میٹس نے تنقیدی مضامین لکھے یہاں پہ دی اٹلانٹک میگزین میں, اور ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کے خلاف فوج کا استعمال جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوگا. اور اس کے علاوہ جو وزیر دفاع ہیں مارک ایسپر, انہوں نے خاص طور پہ بڑے کھل کے اس نقطۂ قدر سے اختلاف کا اظہار کیا. انہوں نے یہ کہنا تھا کہ فوج کو اپنے ہی شہروں میں لانا تب کہہ لیجیے کہ ممکن ہوگا جب حالات قابو سے بالکل باہر ہو جائے. انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کی نظر میں حالات ابھی ایسی نیچر نہیں پہنچے کہ فوج کو متحرک کیا جائے. تو صدر ٹرمپ کے ہی جس خواہش کا وہ اظہار کرتے رہے ہیں اس سے انہی کی ایڈمنسٹریشن کی اہم شخصیت نے اختلاف کا اظہار بہت کھل کے کیا ہے.
میں اس جانب اپنے پینلسٹ سے کچھ دیر بعد ان کا انالیسز بھی لینے والا ہوں کہ اس کے پولیٹیکل یا اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں وہ کیا ہیں. تو جارج فلائیڈ کی تدفین کے ریفرنس میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل یا سیاسی قیادت وہاں پہ موجود ہو سکتی ہے؟
جی جارج فلائیڈ کے لیے زیادہ تقریبا ہوں گی, اور منیاپولس جو شہر ہے جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ ایک یادگاری تقریب جو جمعرات کے روز ہوئی ہے اس میں ریورنڈ ایل شارپٹن نے شرکت کی ہے اور ان کی یاد میں الفاظ بھی کلمات بھی وہ ادا کریں گے. ریورنڈ ایل شارپٹن یہاں پہ افریقی امریکی کمیونٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں. اس کے علاوہ جو تدفین ہے فائنل جو ان کی رسومات ادا ہوں گی وہ ٹیوزڈے کو ہیوسٹن میں ادا ہوں گی, کیونکہ جارج فلائیڈ کا تعلق ریاست ٹیکساس سے تھا. اور اس موقع پہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن بھی شرکت کریں گے. اور یہاں پہ یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے لسنرز کو میں ریمائنڈ کراتی چلوں کہ جو اس سال کے صدارتی انتخابات ہوں گے اس میں وہ صدر ٹرمپ کے مد مقابل ہوں گے. تو یہ بہت غور سے دیکھا جائے گا کہ ایک صدارتی امیدوار جارج فلائیڈ کی جو تدفین کی تقریب ہے آخری جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں اس میں وہ بھی موجود ہیں.
بہت شکریہ سارا زما, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. آپ کو ہم نے واشنگٹن ڈی سی اور باقی ملک کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے مظاہروں کے ریفرنس میں. اب ہم اس پہ انالیسز لیتے ہیں کیونکہ مظاہروں کے بیک ڈراپ میں سیاست اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پہ سیاسی سال کے اندر ان کے لیے بظاہر ان کی اپنی انتظامیہ کے اندر وزیر دفاع جیسی ایک پرسنالٹی کا اسٹیٹمنٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان مظاہروں کو ہینڈل کرنے سے متعلق ایک پالیسی یا ممکنہ پالیسی تھی اس سے اختلاف, اور پھر اس کے بعد ان کے اپنے ایک وزیر دفاع جو ایک اچھے جنرل اور ریسپیکٹیبل پرسنالٹی خیال کیے جاتے ہیں جم میٹس, اگرچہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے فراغت پا چکے ہیں, ان کی یہ تنقید کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم امریکی میڈیا دیکھیں تو انہی دو بیانات کے پس منظر میں ہر طرف اس کی گونج سنائی دیتی ہے. کتنے اہم ہے ان دو شخصیات کا اپنے پریزیڈنٹ سے اور ان کی ایک جو اسٹریٹجی ہے اس سے ڈسٹینس کرنا, وہ بھی الیکشن کے سال میں. ان مظاہروں کے سیاسی اثرات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساجد آلر صاحب, مسلمز آف امریکہ اس کو ایڈ کرتے ہیں اور مسلمز فار ٹرمپ اس کیمپین کے بھی سربراہ ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں ظفر طاہر صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. ظفر طاہر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ کے خیال میں مارک ایسپر کا اسٹیٹمنٹ ہو یا پھر اس سے پہلے جم میٹس کا بیان ہو جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا صدر ان کے بقول ان کے لفظوں کے مطابق نہیں دیکھا ہے جو ملک کو متحد کرنے کی ایون پریٹینڈ بھی نہیں کر رہے, کہ کوشش بھی نہیں کر رہے اور کوشش کو پریٹینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں, کتنا ہرٹ کر رہے ہیں یہ بیانات ان کو؟
ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اسد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین تھینکس ٹو وائس آف امریکہ کہ آپ پاکستانی امریکنز اور مسلم امریکنز کو موقع دیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ساجد طرار صاحب بھی اس پروگرام پہ موجود ہیں. یہ خود بھی ایکٹیوسٹ ہیں, ہم دونوں ایکٹیوسٹ ہیں, بھلے ہمارا جو سیاسی جو رخ ہو وہ ساتھ نہ ہو, یہ ریپبلکنز کے ساتھ ہیں, میں ڈیموکریٹس کے ساتھ, مگر ہم دونوں جو ہیں پاکستانی امریکنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیکھیے سیاست جو ہے نا وہ اس کو نیگیٹیولی آپ نہ دیکھیں. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جارج فلوئڈ کی جو موت واقع ہوئی پولیس کے, میں سمجھتا ہوں تشدد کے نتیجے میں, ریسپانسبلٹی کے نتیجے میں, تو اس میں اس چیز کو میں سیاسی رنگ آنا تو ضروری ہے, اس لیے کہ جو لوگ ہیں وہ اگر سیاسی رنگ نہیں لائیں گے تو پھر یہ چیز سرفیس پہ کس طرح آئے گی. اور ٹرمپ کو میرے خیال سے صرف جارج فلوئڈ کے واقعے سے نقصان نہیں پہنچ رہا, مگر جو ایک لوگوں میں ایک غم و غصہ تھا, کووڈ کی سچویشن بھی تھی, لوگ کافی بند تھے بڑے عرصے سے, اور دیکھیے یہ جو ریسزم ہے, یہ جو تعصب کی جو ہوا ہے, یہ امریکہ میں نئی نہیں ہے, یہ بہت پرانی, یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پیدا نہیں ہوئی اور یہ ایک دم سے جائے گی بھی نہیں, یہ کافی پرانی بات نہیں ہے. مڈ سکسٹیز کا زمانہ لوگوں کو یاد ہے کہ جب جو افریقن امریکنز ہیں وہ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ان کے دادا دادی نانا نانی کس طرح رہتے تھے, اور کافی لوگوں کی جو یادداشت ہے وہ بڑی واضح ہے اور کلیئر ہے. تو دیکھیے لوگوں میں جو غم و غصہ ہے تعصب کی وجہ سے, تعصب کی فضا کی وجہ سے, اور پولیس کا یہاں جو کردار ہے اس ملک میں, اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے ری الیکشن کے چانسز بہت کم ہیں, مگر جو بھی ایڈمنسٹریشن اس واقعے کے بعد سامنے آئے گی وہ پولیس ریفارم پہ ضرور توجہ دے گی, اس لیے کہ یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ ٹوٹلی لوکل ہوتا ہے. پاکستانی جو آپ کے سننے والوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہو, یہاں پہ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ کمپلیٹلی لوکل ہوتا ہے, اس میں الیکشن بھی لوکل ہوتے ہیں, تو مگر اس پہ جو اوور سائٹ ہے, اس پہ جو نظر ثانی کی ضرورت ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ایف بی آئی کو, جسٹس ڈپارٹمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو کل دو بیانات سامنے آئے جو آپ کا سوال تھا, یہ میرے خیال سے بے انتہا شدید نقصان پہنچائیں گے. ایک نہیں کئی ریپبلکنز ہیں جو اب شاید کوشش کریں کہ وہ کنارہ کشی اختیار کریں ٹرمپ سے اور ٹرمپ کی کیمپین سے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کرے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن چینج کرے پارٹی کے معاملے میں, مگر میرے خیال سے ٹرمپ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ تنہا ہوتے چلے جائیں گے.
ساجد آلر صاحب, پہلے جس بات کی طرف ہی آ جاتے ہیں کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو واقعتاً سیاسی تنہائی کا سامنا ہو سکتا ہے؟ مارک ایسپر اس وقت موجودہ وزیر دفاع ہیں, और बड़े वाजे अल्फाज में अपने आप को वो डिस्टेंस कर रहे हैं, उनकी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की बात हो या इवन फोटो आप जो हो हुआ उसकी उसकी भी उसको भी वो डिस्टेंस कर रहे हैं। इसी तरह तनकीद बढ़ती जा रही है, सो क्या ये मुमकिन है कि बाकी रिपब्लिकन या ज़्यादातर रिपब्लिकन डिस्टेंस करें प्रेसिडेंट से?
सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आसिफ भाई, आपने अपने प्रोग्राम में लिया, जफर भाई का शुक्रिया, बड़े मेरे लिए मोहतरम मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आपने इकट्ठा किया हमें। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखूंगा कि ये इत्तेजाज नहीं है, ये लूट है। लूट इस तरीके से है कि फ्लॉयड साहब की डेथ जो है उस पर तो कोई दो रोइया इस पे ओपिनियन नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने खुद खाल करके लवाकीन को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। अब तक 63 लोग अपने जाने जाया कर चुके हैं, 800 बिलियन से लेके $1 बिलियन तक के इमलाक को या लूटा जा चुका है या जलाया जा चुका है। न्यूयॉर्क NYPD अमेरिका में सबसे ज्यादा बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां के चीफ ने खुद प्रेसिडेंट को खुद रिक्वेस्ट की कि हमें बचाया जाए। वहां 500 लोगों को सुबह अरेस्ट किया जाता है, शाम को छोड़ दिया जाता है। वहां पे जो गवर्नर कोमो और वहां के मेयर के अंदर एयरलिफ्ट चल रही है। अब इसमें एक माइंड सेट है, अमरीका की जिस तरीके से बदकिस्मत थी कि कोरोना को भी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे, उसी तरीके से इस चीज को भी अब वो समझते हैं कि पॉलिटिकल रंग दिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ यूज किया जाए। लेकिन दरअसल अब मैं एक छोटा सा आपको थोड़े साल पीछे लेके जाना चाहूंगा कि फर्गुसन शार्लेट और बाल्टीमोर बराक ओबामा साहब के वाच पे चला था, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म में पुलिस ट्रेनिंग के जुडिशियल रिफॉर्म के वादे किए थे। उनके साथ दूसरा बंदा कौन था, वो वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन था। जो बाइडन साहब को इस चीज का इसमें इसको ओन करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने 40 साल के कैरियर में 8 साल के व्हाइट हाउस में रहने पे इन चीजों को रिफॉर्म क्यों नहीं किया। और उसके बाद अब मैं बताना चाहूंगा कि कल जो जो दो बयानात आप बात कर रहे हैं, एक तो मेटिस साहब जो है उन्होंने एक बुक लिखी है, वो जिस शो में बैठ के उन्होंने एक मुतराजिया बयान दिया है वहां से लगता है वो बुक का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरा उसके साथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है क्योंकि वो खुद सोल्जर रहे हैं, मिलिट्री को पुलिस की तरह यूज अभी नहीं किया जा सकता, एक खास पॉइंट पर जाकर उसके बाद यूज किया जाएगा, अमेरिका इज नॉट देयर येट। उन्होंने इसमें उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने उसको डिसएग्रीमेंट नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि अभी अमेरिका उस बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा। अब उसमें मैं ये थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, आपने खुद देखा है कि अगर आप स्लेवरी की बात लें तो फिर पाकिस्तान कॉलोनी रहा, ब्रिटिश कॉलोनी। अगर गाड़ी आप फ्रंट वाली स्क्रीन से देख के चलाते हैं, बैक मिरर से देख के नहीं चलाते। अब मैं यहाँ पे छोटी सी मिसाल बाल्टीमोर की दूंगा, मेमोरियल डे वीकेंड पे 7 मर्डर हुए हैं, पिछले 70 साल से डेमोक्रेट पार्टी उसको रूल कर रही है। यहाँ पे आज एक बाल्टीमोर शहर एक ऐसा शहर है जिसके 3 जो सबका मेयर है वो जेल जा चुके हैं फ्रॉड में। अब अमेरिका के अंदर हर दूसरे शहर का मेयर जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन मेयर है, और हर शहर जो है वो बैंक्रप्सी के वर्ज पे है। हर शहर जो है वो शिकागो जो कि हमारे बराक ओबामा साहब का होम टाउन था, जहां से उनका नारा लेके निकले थे होप और चेंज का, आप वो देख ले, इज अ नॉन लिवेबल सिटी। अब इन चीजों का हल अगर आप ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको रेशियल बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्लेम करना चाहते हैं, तो भले आप करें, उसकी वजह ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से कुछ हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज अगर वो कोरोना का इलाज भी दरियाफ्त कर लेते हैं तो CNN और येलो जर्नलिज्म उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आज और उसी पॉइंट पे आज डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद पैदल चल के मिनेसोटा चले जाए, कौम फिर भी जो एक सर्टन माइंड सेट है जो कि समझता है कि हमने जितना लूटना है, हमने जो लूज करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हराएगा, उन्होंने उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करना।
डॉक्टर साहब, मैं अगर कल के रेफरेंस का अगर मैं ये जी आप कीजिए फिर मैं सवाल फ्रेज करता हूँ।
देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी ही लंबी चौड़ी बात की और शिकागो और पुलिस रिफॉर्म, बराक ओबामा के बारे में क्या होना चाहिए था और न्यूयॉर्क की क्या हालत है। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तमाम अमेरिका की प्रॉब्लम्स पिछले 3 साल में सरफेस पे आई, ये एक हिस्ट्री है अमेरिका की तासुब की, जिसको हमें एड्रेस करना है एज अ नेशन। इट डजंट मैटर कि हम रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। हाँ, ट्रंप साहब ने एक चीज की है कि उन्होंने इन चीजों को वो बड़ी तेजी से सरफेस पे लाए। देखिए मुझे तमाम दुनिया भर के मैगजीन, अमेरिका के तमाम बड़े अखबार, तमाम जितना भी मीडिया है इंक्लूडिंग फॉक्स के कुछ अगर आप कमेंट्री सुने तो ट्रम्प के आने के बाद बाद जो जो सफेद फॉर्म जो 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 इंतहा पसंद तंजीमें हैं, इंतहा पसंद ग्रुप हैं, उनको बड़ी तफियत मिली है। वो भले बड़े इंकरेज हुए हैं और ट्रम्प का साहब के जो ऐसे स्टेटमेंट है कि द शूटिंग विल स्टार्ट आफ्टर द लूटिंग, द शूटिंग विल स्टार्ट आफ्टर द लूटिंग स्टार्ट्स, ये सब वो चीजें लोगों को याद दिलाती है वो जमाना जो कि 60s का था जब कालों पे बड़े जुल्म किए गए मगर उसके बाद फिर रिफॉर्म्स हुई। तो देखिए पॉइंट ये नहीं है तारा साहब कि ये तमाम प्रॉब्लम्स 3 साल की हैं, ये तमाम प्रॉब्लम पिछले 300 सालों की हैं, मगर ट्रंप ने आके वही किया है जो कि एक फैशिस्ट मैं कहूंगा मेंटेलिटी है। बहुत सारे रिपब्लिकन हैं तारा साहब जैसे जो मेरे ख्याल से चाहेंगे सही बात करना मगर ट्रंप की वजह से उनकी सियासत दब गई है। उसी तरह जिस तरह जर्मनी में जब फासिस्ट हुकूमत थी हिटलर की तो कोई जर्मन हिटलर के खिलाफ बात इसलिए नहीं करता था कि वो समझता था कि उनके खिलाफ बात करना ऐसा है जैसे जर्मनी के खिलाफ बात करना, या आज हिंदुस्तान में बहुत सारे इंडियंस मोदी के खिलाफ बात करते हुए कतराते हैं कि शायद उनके कमेंट्स को लिया जाएगा कि वो इंडिया के खिलाफ बात करें। इसी तरह बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो उनको पता है कि क्या हो रहा है और मैं ये चाहूंगा कि रिपब्लिकन्स ट्रंप की ये जो टेंडेंसी है इसकी निशानदेही करें खुल के।
मैं सिर्फ इसमें एक जुमले का इजाफा ज़रूर करना चाहूँगा, एक दूसरी तरफ का वर्जन है मेरी। एक पाकिस्तानी पुलिस कमिश्नर हैं, वो पुलिस का एक मौक़िफ़ देते हैं, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा नस्ल परस्ती का एलिमेंट शामिल हो। इसमें वो फ्रस्ट्रेशन भी शामिल हो सकती है जब पुलिस औसतन 2 अपने ऑफिसर्स की डेड बॉडीज डेली उठा रही है, 911 पे कॉल आती है उनके बकौल और पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे गोलियाँ चल जाती हैं और रोज़ाना 2 पुलिस ऑफिसर्स मर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो उनके बकौल कि पुलिस ऑफिसर पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज होती हैं और लोग पुलिस में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। सो एक तरफ का नुक्ता नज़र ये भी हमारे सामने होना चाहिए। कमिंग बैक टू
जी कि मेरी समझ से एक दो चीजें देखिए, वाहिद एक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हिस्ट्री में और वो खुद ही अपनी कौम को कुछ ना दे पाए, नंबर वन। अब स्याह फॉर्म कुछ करें तो वो वाकई भी व्हाइट सुप्रीमेसी है। इंतीफा जो है वो आपके ख्याल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लैक लाइव मैटर जो इस वक्त फंडिंग कर रही है वो नॉन प्रॉफिट है। इस वक्त फंडिंग कहां से आ रही है कि जिस तरीके से लोग मोबिलाइज करके टेक्सस से ट्रेवल करके न्यूयॉर्क के जाके स्टोरों को लूट रहे हैं। ये मुझे कल एक चैनल पे किसी ने मुझे कहा कि ये लोग जो है ये मॉर्निंग में है। मॉर्निंग आपको पार्क में नहीं लेके जाती, मॉर्निंग आपको किसी हिल स्टेशन पे नहीं लेके जाती, आपको गुची के स्टोर पे ले जाती है, आपको वो रोलेक्स की दुकान तोड़ के आपकी मॉर्निंग हो रही है आपकी। मेरे समय से ये बात है। और इशू सबसे बड़ा बात यह है ना, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी बाल्टीमोर सिटी को 70 साल से चला रही है और इस सिर्फ मेमोरियल डे वीकेंड पे 7 मर्डर हुए हैं, 3 मेयर जो है पिछले वो जेल जा चुके हैं। सोल्यूशन ही कोई नहीं डेमोक्रेट पार्टी के पास।
ये देखिए उन चीजों का सोल्यूशन बहुत जरूरी है तारा साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मगर आप शायद इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि इन क्राउड्स के दरमियान वो सफेद फॉर्म इंतहा पसंद एलिमेंट्स छुपे हुए हैं और पकड़े गए हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है और लोगों को उकसाया। देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी जो प्रोटेस्ट करेगा उसको इस बात का ख्याल रखना है और कंट्रोल करना है कि क्या उनके दरमियान वो एलिमेंट्स तो नहीं घुसाएं जो सोसाइटी को।
ये एक वर्जन है कि इस तरह के अगर मुजाहरे होंगे, ये तोड़फोड़ होगी तो उसका फायदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को होगा। मैं आखिरी सवाल एक करना चाहता हूं,
एक पुलिस वाली बात को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। देखिए मैं पुलिस के काफी एडवाइजरी बोर्ड्स और चीजों में इन्वॉल्व रहा हूं। लॉ एनफोर्समेंट की जॉब आसान नहीं होती, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक आम पुलिस ऑफिसर से पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरती जब उसके सामने उसके शहर अपने शहर के लोग खड़े हों और उसको इस तरह से ट्रीट करो जैसे वो शायद दुश्मन है उनका। मगर पुलिस के जो प्रोसीजर्स हैं, पुलिस के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन पे नजर सानी की जरूरत है। लोग यही कह रहे हैं कि एक आम पुलिसमैन जो वो तो वही प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं जो उसकी किताबों में लिखा है। उन प्रोटोकॉल्स को, उन प्रोसीजर्स को, उन चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है।
अच्छा, अब मैं एक और जुमला, चूंकि बार बार वो नस्ल परस्ती का लफ्ज यूज हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो कल का एक सर्वे है जिसमें वो रॉयटर्स का है, वो CNN का नहीं है, रॉयटर्स का है और एप्सोस का है, उसके मुताबिक 65% लोग, अमेरिका के आवाम, वो इन मुजाहिरों के हामी हैं। 55% عوام، ظاہر ہے یہاں پہ سیاہ فام کی آبادی جو ہے اس میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے یا شیئر ہے وہ 55% نہیں ہے، وہ 20 کے لگ بھگ ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو کمیونٹیز ہیں، باقی جو ایتھنک گروپس ہیں، وہ بھی اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ دوسرا، 55% یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اس معاملے کو، اس احتجاج کو، یا جارج فلائیڈ کی موت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو بہتر انداز میں ہینڈل نہیں کیا۔ سو میں نے یہ صرف بیلنسنگ فیکٹر کے لیے رکھا ہے۔ اب جو میں سوال اسی بیک ڈراپ میں کرنا چاہ رہا ہوں دونوں اپنے پینلسٹ سے، اب اس کے سیاسی مضمرات آگے کیا ہیں، کیونکہ الیکشن کا سال ہے، اس سے پہلے COVID-19، اس کے ریفرنس میں بھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہی الزام ہے کہ انہوں نے صحیح ہینڈلنگ نہیں کی، وقت پہ نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ ڈیتھ، سب سے زیادہ کیسز، اور اب یہ جارج فلائیڈ کا معاملہ اور امریکہ بھر میں مظاہرے آگے۔ الیکشن کے سال میں یہ کیا نتیجہ لا سکتے ہیں ساجد تارڑ صاحب؟
دوسرا، یہ جو آج ڈاکے پڑ رہے ہیں اس کے بعد اس کو سلجھائے گا جلدی کون؟ جلدی سے مراد ہے کہ اکانومی کو دوبارہ ریوائیو کون کر پائے گا، یہ بیلٹ پہ کوسچن یہ ہوگا۔ اور اس کے لیے اس کے جواب میں یہ ہے کہ ان کا جو اپوننٹ ہے وہ ایک پروفیشنل پولیٹیشن ہے، 40 سال سے اس نے اس کو پروفیشن بنا کے چلایا ہے، اس کی لا ڈگری ہے، اس نے زندگی میں ایک بھی جاب نہ کریٹ کی ہے نہ بزنس ایک کریٹ کیا ہے، اور پری کرونا اور یہ پری لوٹ مار جو اکانومی کے حالات کیا تھے، ان ایمپلائمنٹ 3.4% تھی، کس طریقے سے ٹیرف لگا کے ٹریجری میں پیسے آئے، کس طریقے سے وہ مینڈیٹ کر کے افغانستان سے بھی ٹروپس واپس لا رہے تھے، کس طریقے سے وہ فارن پالیسی کو ٹھیک کر رہے تھے، رشیا اور چائنا کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، تو یہ سارا کچھ بیلٹ پہ ہوگا۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے، جتنا یہ لوٹ مار ہوئی ہے وائٹ امریکن، اور میں ایک اور بات کہوں گا خاص کر ظفر بھائی کے لیے، میں یہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے خود کہا کہ پاپولیشن افریقن امریکنز کی بہت تھوڑی ہے، ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ اوباما پیریڈ میں اپوائنٹمنٹس جو تھی وہ ساری کے ساری ریشل بیسس پہ ہوئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے وائٹ امریکن اور میجورٹی آف دا پاپولیشن کو سنب کرتے رہے ہیں، وہ جس کا ریئیکشن ڈونلڈ ٹرمپ بن کے آئے تھے۔ تو یہ چیزیں ساری بیلٹ پہ ہوں گی۔ آج بھی جس طریقے سے پولیس کی گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، سارا کنٹری یہ دیکھ رہا ہے، یہ پھر لائنوں میں لگ کے ووٹ دیں گے۔ اور پچھلی دفعہ 2016 میں بھی لوگوں کا لوگو تھا کہ وی وانٹ آر کنٹری بیک، تو ابھی بھی لوگ جو ان چیزوں کا بجائے فائدہ ہو رہے گے یہ بیک فائر کرے گا سارا کوئی ڈیموکریٹ پارٹی پہ، انتیفا پہ، بلیک لائف میٹر پہ، لوگ اس دفعہ پھر اکٹھے ہو کے ووٹ ڈالیں گے ان فیور آف ڈونلڈ ٹرمپ۔
جی ظفر طاہر صاحب،
جی تو یہ آپ کا اوپینین ہے، میں اس کی آپ کے اوپینین کی قدر کرتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے خود کہا کہ بائیڈن جو ہے 40 سال سے انوالو ہیں، بائیڈن کی ایک زندگی ایک پبلک سرونٹ کی زندگی ہے، وہ بزنس مین نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی بہت بڑی دولت انہیریٹ کی اور اس کی بنیاد پہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا بزنس شروع کیا۔ بائیڈن جب تک واشنگٹن میں رہے روزانہ ٹرین سے ڈیلیور سے اپنے گھر جایا کرتے، تو ان کی ایک سمپل سی زندگی ہے۔ ہاں وہ پبلک سرونٹ ہے اور پبلک سرونٹ بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی بھر پبلک سرونٹ رہے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور لوگ اس لیے ٹرمپ کو ووٹ دیں گے، تو دیکھیے آپ نے خود اپنے آپ کے الفاظ ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہیں وہ اوباما کی پالیسیز کا ریئیکشن ہے۔ اگر اوباما نے افریقن امیریکنز کو اپوائنٹ کیا تو وہ پھر بھی وہ کمی پوری کبھی نہیں کر پائیں گے، نہ وہ کر سکتے ہیں جو کہ پچھلے 300 سال 400 سالوں سے جو ہمارے افریقن امریکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ آپ ٹیکسس میں دیکھیے ہسپینک امریکنز کی کتنی پاپولیشن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسپینک امریکنز کے پاس اس تناسب کی اپرچونیٹیز یا امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہے؟ بالکل نہیں۔ کل کو اگر کوئی ہسپینک پریزیڈنٹ آئے گا اور وہ اس چیز کو اگر وہ ہینڈل کرنا چاہے تو آپ اس پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے ہسپینکس کی بھرتی کی۔ یہاں اس ملک میں ایک میرٹ سسٹم ہے، لوگوں کو ایک سرٹن کوالیفیکیشن کے بعد ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک دیکھیے الیکشن کی بات ہے، تو الیکشن کا تو دیکھیے نہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں نہ ترا صاحب پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی بات صحیح ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ جی وی وانٹ آور کنٹری بیک، مگر وہ زیادہ تر لوگ جنہوں نے 2016 میں یہ کہہ کے ووٹ ڈالا کہ وی وانٹ آور کنٹری بیک، ان کو ان کا ملک نہیں ملا۔ میں بات کر رہا ہوں ان وائٹ امیریکنز کی جو سبب میں رہتے تھے، اور بہت سارے جو ڈیموکریٹس ووٹ کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ شاید ہماری جابز واپس آ جائیں۔ کوئی جابز واپس نہیں آئیں، بلکہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک کیاوس کا عالم ہے۔ پوری دنیا کے آپ بات لیڈرشپ کو دیکھ لیں، چاہے وہ جرمنی کی مارکل ہو، چاہے وہ कनाडा के ट्रूडो हों, चाहे वो कंजर्वेटिव लीडर्स हों या लेफ्टिस्ट लीडर्स हों, सब इस बात से परेशान है कि ये ट्रंप साहब, देखिए ये मामला रिपब्लिकन डेमोक्रेट का नहीं है, ये मामला अकलमंदी और कॉमन सेंस का है। ये कौन सा प्रेसिडेंट है, कौन सा लीडर है इस दुनिया में जो सुबह उठ के ट्वीट के जरिए अपनी हुकूमत चलाता हो? ये कौन सा प्रेसिडेंट है जो बगैर सोचे समझे अब व्हाइट हाउस के सामने पुलिस को इस्तेमाल करके आप मिलिट्री की धमकी देके आप लोगों को खाली करवाएं और एक चर्च के सामने जहां खड़े हो जाएं, जिस चर्च में यू आर नॉट इवन वेलकम, आप बाइबल को अपने हाथ में ले लें और ये प्रिटेंड करें कि आप बहुत बड़े रिलीजियस लीडर हैं? इट हैज बैकफायर्ड। उस चर्च के पैस्टर ने इस बात की मजम्मत की, दूसरे दिन ये एक और चर्च गए, कैथोलिक चर्च, कैथोलिक आर्कबिशप जो है, आर्कबिशप जो है वो डीसी का, उसने उस बात की मजम्मत की। तो ये मामला रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है जो कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो अकलमंदी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये मामला बिल्कुल लेफ्ट और राइट का नहीं है, ये मामला कॉमन सेंस का, इस मुल्क को कॉमन सेंस की जरूरत है। मगर आखिरी में मैं असद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वंस अगेन वॉइस ऑफ अमेरिका बाय प्रोवाइडिंग अ फोरम
जो बाइडन जो 40 साल से पब्लिक सर्वेंट है, ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये एक पब्लिक सर्विस है, ये प्रोफेशन नहीं है। दूसरा, हंटर बाइडन ने करप्शन किया, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, यूक्रेन और चाइना से पैसे बनाए हैं। तो तीसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अकेले नहीं है कि स्लिप हो गए, ये प्रेसिडेंट बन गए। मुझे ब्रेक्सिट के बारे में बताएं, मुझे मैक्रॉन के बारे में बताएं, मुझे उसके बाद स्प्रिंग ब्रेक के बारे में बताएं, मुझे उसके बाद मोदी साहब के बारे में बताएं, मुझे उसके बाद इमरान खान साहब के बता रहे हैं। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं, लोग बेजार हो चुके हैं इन जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है जो 40-40 साल से आते हैं और डिलीवर कुछ नहीं करते। उनका रिएक्शन में डोनाल्ड ट्रंप साहब अकेले नहीं आए, पूरी दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आए।
चले, आपने ये मान लिया कि मोदी और ट्रंप जो है उनका बैकग्राउंड से
नहीं,
मुझे यहाँ पे इंतजार करना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका साजिद दारर साहब, आपका आपने में ज्वाइन किया, और जफर दारर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और जैसा कि आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद, मरीजों की तादाद चीन जहाँ से ये वायरस फैला था वहाँ से तजावज़ कर चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इतलात है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो तादाद है कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की, वो 82,000 से तजावज़, माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 24 घंटों में 82 अमवात हुई हैं, और ये तादाद जो है वो पाकिस्तान में 85,000 से तजावज़ कर चुकी है। 85,264 ये जुमेरात की रात तक के आदाद शुमार हैं, जिनमें 30,000 से ज़्यादा मरीज बहरहाल सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर अगरचे नए से नए SOPs और उन पर अमल दरामद कराने के लिए भले वो वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, KP हुकूमत हो, उनके दावे और ऐलानात सामने आते रहते हैं, लेकिन SOPs पे अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि हालिया दिनों में हाई प्रोफाइल अमवात भी हुई हैं, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली, हत्ता के सूबाई वजीर, उनकी भी मौत कोरोना के सबब वाकई हो चुकी है। क्या मसला है पाकिस्तान के अंदर, कितना बड़ा ख़तरा है, बाहर से बैठे हुए एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में किस तरह के खतरात उमड़ते हुए देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए इंटेलिजेंशिया के लोग वो क्या समझते हैं, एनालिसिस लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से डॉक्टर एजाज अहमद साहब, न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनके न्यूयॉर्क के अंदर कई अर्जेंट केयर्स हैं जिसमें वो कोरोना पेशेंट्स से डील करते रहे हैं, और इसके अलावा साथ साथ वो टेलीमेडिसिन के ज़रिए भी मदद फ्राहम करते हैं, भले वो अमेरिका में लोग हों या पाकिस्तान के अंदर। सो दून और डॉक्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसार राणा साहब सीनियर साथी हैं, तजियाकार हैं और यूट्यूबर हैं। इसार राणा साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, आप ये बताइएगा, आज आपका एक प्रोग्राम भी था जिसमें बताया जा रहा है कि कई एक शहर बिलखसूस बहुत वल्नरेबल हो चुके हैं, क्या इतलात हैं, और ये जो पाकिस्तान में नंबर्स बढ़ रहे हैं इसके ऊपर कोई तशवीश हुकूमत की, इंतजामिया की, शहरियों की आपको नजर आती है?
देखिए, जब कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा था तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी इसको ये समझते थे कि ये कोई ऐसी मामूली सी चीज है और ये आके निकल जाएगी, लेकिन मैं एक सहाफी हूँ और मेरा आवाम से बराह रास्त रहता रहता है, ताल्लुक रहता है। पहली दफा मैंने पाकिस्तान के आवाम में एक खौफ और थोड़ा सा आदम तहफुज का एहसास जो है वो महसूस किया पिछले 48-72 घंटों में। और जो ये आप फिगर अभी बोल रहे थे 84,000 का, ये तो बिल्कुल समझ लें कि ये तो बहुत इनिशियल भी नहीं मैं कहूंगा, ये तो बहुत ही गैर हकीकी है। मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर का मैं वासी हूँ। मैंने अभी जो YouTube पे अपना व्लॉग किया है, मेरी इत्तलात ये है कि लाहौर में ही, हालांकि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने जो वफाकी काबीना को रिपोर्ट पेश किया उसमें उन्होंने दावा किया कि 7 लाख के करीब पेशेंट, लेकिन मेरा दावा है कि ये 15 से 20 लाख हो चुके हैं लाहौर,
सिर्फ लाहौर के अंदर,
और सिर्फ लाहौर में, और हर दूसरे घर में एक कोरोना का पेशेंट मौजूद है। और ये जो रिपोर्टेड है वो अलहदा है, जो अनरिपोर्टेड है वो अलहदा है, जो जेपी के साथ मेडिसिन लेके अपने आप को कर रहे हैं वो अलहदा है, जो घरों में टोटको से कर रहे हैं वो अलहदा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान कोरोना की लपेट में। आप बात कर रहे हैं कि हम चीन से बढ़ गए, चीन से तो हम डॉक्यूमेंटेशन में जो टेस्टेड है उसमें बढ़ गए, अदरवाइज तो जो असल ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये है कि पहली दफा कोरोना ने भरपूर पाकिस्तान पे हमला किया है।
अगेन हम जो नंबर दे रहे हैं, जो नंबर हमारे हैं वो ऑफिशियल हैं और बिल्कुल अनऑफिशियली इसी तरह के खतरात हैं जो राणा साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्टिंग अभी तक इनिशियली 6 से 7 हज़ार तक रोजाना होती रही है। हेल्थ मिनिस्टर से हमारी बात हुई, अब वो इसको बढ़ा के 15-20 हज़ार तक लेके गए हैं। इसके ऊपर अगर ये नंबर हैं तो फिर इसका मवाजना अगर अमेरिका से करें, यहाँ तो रोज़ाना 1.5 लाख से 2 लाख टेस्टिंग होती रही है, उसके बाद फिर ये नंबर बढ़े हैं। डॉक्टर एजाज साहब, आपको चूँकि जाना भी है तो इसलिए मैं आपकी राय जल्दी लेना चाहूँगा, क्या ख्याल है आपका, पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के अवाम ने, हुकूमत ने कितना इसको संजीदगी से लिया है? अब जैसे राणा साहब फरमा रहे हैं कि लोग संजीदा हो रहे हैं, सो क्या बहुत देर नहीं हो चुकी, क्या सबब है पाकिस्तान में इतना बड़ा फैलाव?
जी, मैं आई एग्री विद राणा साहब जो कह रहे हैं, दैट इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड। जब यहाँ पे भी हमने 2000 केसेस देखे थे न्यूयॉर्क में, तो हमारा ख्याल था यहाँ 50,000 हो जाएंगे, लाख हो जाएगा, और जब हमने यहाँ पे 20 देखा तो फिर हमने कहा कि डॉक्टरों का, जब हमने पेशेंट देखने शुरू किए अर्जेंट केयर्स में, तो हर दूसरा बंदा आ रहा था, और फिर जब एक बंदा आता है तो वो फिर पूरी फैमिली आती है, 7-8 लोगों को आता है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ख्याल था कि अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं। उस वक्त लोग बड़े हैरान हो गए कि आप 10 लाख कह रहे हैं, इसी तरह मैंने टीवी पे कह दिया कि 10 लाख केस हो जाएंगे, लेकिन अभी देखें 20 लाख हो गए हैं। तो ये राणा साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने सीरियस नहीं लिया हुआ, और मैंने देखा कि ईद पे जिस तरह लोग जो है वो घूम फिर रहे थे और शॉपिंग हो रही थी, असल में कोरोना का ट्रीटमेंट तो है नहीं, आपने एक ही तरीके से उसको कंट्रोल करना है कि एक बंदे से दूसरे को ना हो। वो ऐसे ही हो सकता है कि जिसको हुआ हुआ है वो 14 दिन जो है वो क्वारंटीन में रहे और अपने आप को दूसरों से अलग रखे, लेकिन अगर वो बंदा नहीं रखता तो वो जिसको मिलेगा, जिसके साथ हाथ मिलाएगा या जिसके साथ खांसी कोई एयरबोर्न जो एक्सचेंज होगी उसको हो जाएगा, तो ही इज गोइंग टू स्प्रेड। एक बंदा जो है वो 100, 200, 500 और 5 दिन में 35,000 लोगों को दे सकता है, तो दिस इज इतना कंटीजियस वायरस है, ये बहुत स्पीड से जाता है। तो आई थिंक अभी भी अगर सीरियस लें तो इसका,
जब हम कहते हैं सीरियस लें तो क्या मुराद, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, क्योंकि अब लोग मुझे नहीं लगता कि घरों में जाने को तैयार हैं, या हुकूमत लॉकडाउन करने की पोजीशन में भी है फाइनेंशियली, सो इसके साथ अगर सरवाइव करना है तो क्या करें लोग?
देखें, अगर अगर लॉक आइडियल तो ये है कि लॉक 6 वीक का होना चाहिए, जैसे वो केस ज्यादा होते हैं तो रेकमेंड हम करते हैं कि 6 वीक का लॉक हो। अगर वो नहीं, लॉकडाउन नहीं हो सकता तो उसका फिर ये होता है कि हर बंदा मास्क पहने और 6 फीट डिस्टेंस पे रहे। अगर एवरीबॉडी इज वेयरिंग मास्क, अगर जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं वो कैरियर भी हैं तो वो दूसरे को नहीं देंगे। हर बंदा अगर मास्क पहने और दूसरे से दूर रहे 6 फीट
तो ये उसका हालत है। डॉक्टर साहब, मैं क्विकली आपसे रैपिड फायर में इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास 10 मिनट हैं, मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा मसला आ रहा है, राणा साहब भी इसकी तायद करेंगे, डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं लोग हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं करते। वहाँ पर अजीब अजीब सासी नज़रियात चले हुए हैं कि डॉक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं, डॉक्टर्स जानबूझ के मार रहे हैं। हालांकि खातून डॉक्टर रो के बता रही है कि मेरे बेटे को सर में दर्द था और वो 72 घंटे के अंदर अंदर उसका इंतकाल हो गया, अल्टीमेटली कोरोना पेशेंट था, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। सासी नजरियात पे बहुत यकीन है, टेलीविजन बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, वजीर वज़राए आला बोल रहे हैं, गवर्नर्स बात कर रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं सुनते, क्या वजह है?
अच्छा, ये यहाँ पे भी शुरू में बहुत ये डिस्कशन हुई थी अमेरिका में भी, ये कॉन्स्पिरेसी है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी। लोगों को जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए, ना ये किसी ने वायरस बनाया है और ना कोई फैला रहा है और ना किसी को पैसे मिल रहे हैं। ये चाइना का एक एरिया है, साउथ रीजन, वहाँ पे बहुत वायरस आते हैं। वहाँ पे अमेरिका ने और चाइना ने मिलकर एक लेबॉरेटरी बनाई हुई है, हर 10 साल बाद 20 साल बाद कोई ना कोई वायरस वहां से निकलता है। लास्ट टाइम मर्ज निकला था वो मिडल ईस्ट से, लेकिन सार्स चाइना से निकला था, फिर दुनिया में मैक्सिको में इबोला और अफ्रीका से निकला था। इस तरह ये वायरस निकलते हैं और इनको कंटेन करने का तरीकाकार यही होता है कि आप लॉकडाउन करें और एक दूसरे से दूर रहें और उसको स्प्रेड ना करें। इसका कोई जो है शॉर्टकट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल साजिश है, ना सोचे ना सुने और ना ही इसके ऊपर आप बिलीव करें,
भरोसा नहीं करना चाहिए। साजिशी नजरियात पे लोगों का बहुत भरोसा है, डॉक्टरों के ऊपर एतमाद नहीं है, मशीनरी के ऊपर एतमाद नहीं है, ये चीजें कहाँ लीड करेंगी, कहाँ ले जाएंगी लोगों को?
देखिए, इसका जिम्मेदार जो है ना वो मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का एक तूफान है और उसमें एक आम आदमी जो है ना वो बेचारा कंफ्यूज होके रह जाता है। कभी सोशल मीडिया पे एक ऐसी साजिश थ्योरी आती है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अमेरिका की साजिश है, थोड़ी देर बाद एक नई थ्योरी आएगी जिसमें आप पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं ये तो इसराइल की साजिश है, फिर नई आ जाएगी कि बिल गेट्स की है, फिर आ जाएगी चीन की है। इस सारे ने ये किया कि कोरोना को लोगों की नजर में मशकूक कर दिया।
लेकिन राणा साहब, मैं अदब के साथ थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करते हुए इस काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर उनको इशार राणा बता रहे हैं, अगर उनको डॉक्टर एजाज अहमद बता रहे हैं, एक सीधी बात, अगर उनको डॉक्टर फौची बता रहे हैं, वो बात भी तो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, उसको वो बिलीव नहीं करते?
बात ये कि ये इंसानी फितरत है, वो हमेशा ऐसी चीज जिसमें साजिश की कड़ियां नजर आती है ना उसमें दिलचस्पी लेते हैं। इशार राणा कहता है कि भाई क्वारंटाइन कर लें, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे चलता है कि ये वायरस वुहान से जान के निकाला गया ताकि इससे एक नई किस्म की जो है वैक्सीनेशन होगी और वो आवाम में यूं होगा और यूं होगा, वो उनके लिए दिलचस्पी का बाइस है।
सही।
तो और शुरू में समहाउ दुनिया के तमाम मीडिया ने इसके साथ ज्यादती की, इस वायरस के हवाले से आवाम के साथ, और उन्होंने एक ऐसा फिजा क्रिएट की जिसमें आम आदमी जो था वो कंफ्यूज होके रह गया। अगर पहले दिन से सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा ये होता कि हाँ ये एक वायरस है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं हाँ ये एक वायरस है और इससे हमने निबटना है और निबटने के ये तरीके, तो ये बात सीधी
रहती।
मेरी नजर में असद, मैंने बड़े दुख और तकलीफ से कह रहा हूँ कि हम बहुत देर कर चुके पाकिस्तान में। मुझे बड़ा, मैं तो चुके ये इस लाहौर में रह रहा हूँ, मैं पंजाब में पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं बीइंग जर्नलिस्ट और एक कालम निगार और फिर जाहिर है हम जरा हमें अल्लाह ने थोड़ा सा चीज ज्यादा दी होती है सो महसूस करने की, तो ये एक मैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम बंधे हुए हैं और हमारे चारों तरफ तूफान है और अब हम कुछ नहीं कर।
माफी चाहता हूँ, मुझे क्विकली डॉक्टर एजाज साहब के पास जाना है। डॉक्टर साहब, जहाँ पे बड़ी अच्छी खबरें थी कि वैक्सीन बन रही हैं, वहाँ पे आज डॉक्टर फौजी का एक स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि अव्वल तो ज़ाहिर है फौरी तौर पे कोई वसूक से नहीं कहा जा सकता, अगले साल में अगर ये वैक्सीन आ भी जाती है तो वो कहते हैं कि इम्कान इस बात का है कि ये सिर्फ चंद महीने के लिए मौसर हो, इसका मतलब है कि मुस्तकिल इलाज तो ना हुआ, फिर एक बार फिर यानी लोग डिपेंडेंट रहेंगे कि वैक्सीन बनती रहे, या शायद डायबिटीज़ के मरीजों की तरह ये वैक्सीन भी हर इंसान बन जाएगी।
देखें मैं एक चीज आपको बताऊं कि वायरस ये आया है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, दो तीन साल वैक्सीन आए या ना आए। लेकिन अब आपने वैक्सीन की बात की है तो उसके मैं थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव बता देता हूँ कि तीन कंपनियां हैं जो कि बड़ी काम कर रही हैं, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड। गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने उनको, एक कंपनी को एस्ट्राजेनेका को $1.2 बिलियन दिया है कि वो 300 मिलियन वैक्सीन बनाए ताकि वो अमेरिकन, सारे अमेरिकन को लग जाए। उसका इलेक्शन आ रहा है नवंबर दिसंबर में, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इतनी वैक्सीन हो जाए कि ताकि सारे अमेरिकन को लग जाए। अब वैक्सीन, पहली बात तो ये है कि अगर आ भी जाती है तो अब अगर आप मुझे कहेंगे कि वैक्सीन लगवाओ तो मैं तो नहीं लगवाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है कि भाई वो मैं लगवा लूं तो सेफ है कि नहीं, 6 महीने बाद मुझे अगर बाद में सीजर होने शुरू हो जाए तो।
लेकिन आखिर ह्यूमन के ऊपर ट्रायल के बाद ही आएगी ना डॉक्टर?
नहीं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड ट्रायल है। जो ट्रायल होते हैं एटलीस्ट 6 महीने या 12 महीने या 18 महीने ट्रायल चले और उसपे कोई साइड इफेक्ट ना हो। हम खुद डॉक्टर्स नहीं लगाएंगे, अपने बच्चों को नहीं लगाएंगे तो बाकी लोग कैसे लगाएंगे? तो वैक्सीन जो है पहले आ नहीं रही, और अगर आएगी भी तो वो इस तरह की आएगी कि बहुत लिमिटेड डोजेज होंगी और उनका भी पता नहीं होगा कि सेफ है कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं।
सही। सो अब आ जाते हैं आखिरी सवाल आपसे, मैं इस रेफरेंस में करना चाहूंगा। जैसे हम तो पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं कि वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे।
मुदाखलत कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से, एक सवाल मैंने पूछना था कि अभी ये मीडिया में खबर आई है और ये हमने पहले भी कल दी है कि कोई इंजेक्शन आ गए हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है और 20,000 का वो एक इंजेक्शन है और उसका टोटल पहले को 2 लाख समथिंग का पूरा वो कोर्स है और वो मुख्तलिफ बड़े मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है, तो ये क्या, ये इसमें कितनी
बात है?
देखिये वो रेमडेसिविर है, इंजेक्शन है, वो जो स्टडी हुई थी वो उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आया था। पाकिस्तान की एक कंपनी है, उसको भी उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वो बनाए इंजेक्शन, तो प्रोबेबली पीपल आर मेकिंग इट एंड सेलिंग इट। लेकिन हम वो उसी उन्हीं लोगों को देते हैं जो कि आईसीयू में है या वेंटिलेटर पे है और उसको आईवी देते हैं, और उस फेज पे जाने से पहले ज्यादातर जो 70% या 80% लोग हैं वो तो बाहर ही होते हैं, जो चल फिर रहे हैं, जो घरों में हैं, उनके लिए वो इंजेक्शन नहीं है।
रेमडेसिविर की बात है कि उसके इब्तदाई नतीजे साबित करते थे कि वो मुअसर है काफ़ी हद तक। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, हम तो पाकिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग का रोना रो रहे हैं, अब अमेरिका के अंदर एक और बड़ा क्राइसिस आ गया, आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वहाँ पे कर्फ्यू है, दिन भर प्रोटेस्ट होते हैं, रात में लोग इकट्ठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन है, लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ये चीज़ भी किसी बहरान का सबब बन सकती है कोरोना के बैकड्रॉप में?
बिल्कुल बन सकती है। आजकल जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की वो कम हो गई है, ईजिंग हो गई है, तो केसेस ऊपर जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में जहाँ पे एक दिन में 500, 700, 800 केसेस तक आ गए थे, अब फिर 1,000, 1,200, 1,300 तक चले गए हैं, और जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में जहाँ पे केसेस 40,000 तक गए थे एक दिन में, वहाँ वो 30,000 तक आए, फिर 20,000 तक आ गए, फिर 17 तक, आज फिर 23,000 तक चले गए हैं। तो वायरस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, आप उसको जितना सोशल डिस्टेंस यूज करेंगे इट विल बी देयर, इट इज देयर, इट्स नॉट गोइंग टू एनीवेयर।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब, आपको चुके जाना है। डॉक्टर इसहा राणा साहब हमारे साथ रहेंगे, उनसे मैं एक मजीद सवाल करता हूँ। डॉक्टर एजाज थैंक यू सो मच। स्वामी जब हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जुमेरात की रात है और अमेरिका में जो है इस वक्त केसेस की तादाद 1,92,000 और वबा से सेहतमंद होने वालों की तादाद 31 लाख से ज़्यादा है, और यहाँ पे भी यह ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान का जहाँ से हमने शुरू किया कि नंबर बहुत बढ़ चुके हैं। इसहा राणा साहब आप ये बताइएगा कि ये एक आपका जो वी लॉग है उसी बैकड्रॉप में कौन कौन से शहर आपके तजिए के मुताबिक सबसे ज़्यादा ख़तरे से दो चार हैं और उसकी उसकी वजह क्या है?
देखें इस्लामाबाद में तो इन्होंने एक गैर एलानिया कर्फ्यू टाइप माहौल बना दिया है, मास्क के बगैर आप नहीं निकल सकते, जो SOPs हैं वहाँ पे बहुत सख्ती से अमल हो रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ बाजार बंद कर दिए गए हैं, शॉप्स बंद कर दी गई हैं, और इस्लामाबाद जो है इट इज ऑलमोस्ट यू नो लुक लाइक जैसे यहाँ पे एक सख्त तरीन लॉकडाउन आप कह सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के किसी शहर में कोई SOP नहीं है, पाकिस्तान के किसी शहर में किसी SOP की कोई परवाह नहीं की जा रही। आप हैरान होंगे कि चने बेचने वाले की दुकान पे आप चले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुफ्त बिक रहे हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। और मैंने अभी जो ईद पे कालम लिखा मैं चाह रहा था वो उसका एक जुमला शेयर करूं कि जब मैं मस्जिद गया तो मैंने ग्लव्स पहने हुए थे और मैंने मास्क पहना हुआ था। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि पूरी मस्जिद में एक बंदे ने भी ना ग्लव्स पहने हुए ना मास्क, और बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार शायद मैं ही अकेला बड़ा डरपोक हूँ, मौत से डरता हूँ, और शायद मतलब मैं कोई बावले गांव में ऊंट आ गया जो बिल्कुल ही अलर्ट है, मस्जिद में मास्क लगा के बैठा है, ग्लव्स पहन के बैठा, तो मैंने वो उतार दिए। और जाहिर है क्या करता है दुनिया, उस पूरी मस्जिद में मैं एक ऐसा लग रहा था कि मैं एक अकेला बेवकूफ। तो ये सारी सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की, लाहौर की मैंने आपको बता दिया है, गुजरांवाला में बेतहाशा पेशेंट है, फैसलाबाद में बेतहाशा पेशेंट है, मुल्तान में बेतहाशा पेशेंट है, यू जस्ट नेम द सिटी ऑफ
मुल्तान के बारे में अखबारी एक खबर मेरे सामने आ रही थी कि शायद वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गया है पाकिस्तान के अंदर, और मुल्तान में भी बहुत सारे ऐसे
जी बिल्कुल ऐसे ही है
जी
बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी रीजन ये कि बदकिस्मत ही है, देखिए मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग इमरान खान, लेकिन असल चीज ये है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्या करेगा वो, अगर वो सख्त लॉकडाउन करता है तो लोग भूखे मर जाएंगे
और गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। $8 बिलियन डॉक्टर अता कहते हैं कि $8 बिलियन हमने दिया है इसके ऊपर, और इतनी मजीद सख्त नहीं हो सकती है कि एक $8 बिलियन का
ये $8 बिलियन भी जो है ना ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है
जी,
ठीक है। और लोग ये तो यकीन करें पाकिस्तानी आवाम जो है जितनी मर्जी बुरी हो जो मर्जी हो, लेकिन इसमें अभी चैरिटी जिंदा है, दुनिया की सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाली कौम है। मैंने अपनी आंखों से सख्त लॉकडाउन के दौरान लोगों को देखा कि वो घरों से गाड़ियों में निकलते थे खाना लेके, और फुटपाथों पे और इधर उधर लोगों तक खाना पहुंचाते थे, इतनी बड़ी तादाद में राशन तकसीम हुआ कि लोगों के घर में दो दो तीन तीन माह का राशन कटा हो गया, लोगों ने बाजारों में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी खाली राशन ही सब कुछ नहीं है ना, जिंदगी के और भी बहुत सारी जरूरियात है। अब मैं मुझे लोग कहते हैं कि जी देखे जी इन्होंने पता था कि पेशेंट बढ़ेंगे तो लॉकडाउन नरम क्यों किया, भाई लॉकडाउन नरम ना करते तो लोग भूखे मर जाते। यहाँ पे अमेरिका जैसे जदीद तरीन मुल्क में जो जिसे हम बड़ा सिविलाइज कहते हैं, मैंने वीडियोस देखे हैं जो जैसे लोग स्टोर्स को लूट के भाग रहे हैं, जिस तरह लूट मार यहाँ पे हुई है।
देखिए इंसानी फितर है, अगर आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास इनकम नहीं है, तो यही खतरा होगा। और इसी खतरे के पेश नज़र ये कहा गया यहाँ पे अमेरिका में भी कि ये जो रिलीफ पैकेज फौरी तौर पे अनाउंस कर दिया गया वो उसके पीछे यही खतरा था कि फौज को लटना पड़ा।
देखिए इसके बावजूद अमेरिका ने सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया, वो लोगों के घर तक पहुंचा चेकों की शक्ल में, मतलब ये बिल्कुल एक क्लैरिटी थी कि भाई पहुंच रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं ना, बीच में लोग हाथ मार रहे होते हैं, अपनों को दे रहे होते हैं जो डिजर्व नहीं कर रहे होते उन तक जा रहा होता है, ये भी मसले चल रहे होते हैं। इसके बाद अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ी है कि मैं तो वो फिगर्स भी अभी कैलकुलेट प्रॉपर नहीं कर पा रहा, और मेरे तो इर्द गिर्द हर दूसरा बंदा बेरोजगार हो गया। सहाफत के अंदर एक बड़ी तादाद में लोगों को निकाल दिया गया, और उसके बाद जो रह गए हैं उनकी तनख्वाहें कट डाउन कर दी गई है, दूसरी तरफ महंगाई जो है वो अपने अरूज पे चली गई है। तो ये एक पाकिस्तान, एक दुआ है मेरी कि पाकिस्तान किसी बड़े अलमी का शिकार ना हो और किसी तरह हम इस क्राइसिस से निकल जाए, जो अभी बहुत लंबा सफर है, ये तो 15-20 दिन का तो खेल ही नहीं है। ये तो बड़ा, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 3-4 साल चलेगा, चले एक साल बाद हम थोड़ा इम्यून हो जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इसके खिलाफ कुछ हमारी रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाएगी, कुछ मेडिसिन आ जाएंगी, इवन देन जो इक्तिसादी झटका लगेगा पाकिस्तान को या दुनिया को वो तो उसको तो पूरा होते होते कई दहाइयां लग जाएंगी,
कोई शुबा नहीं। कम अज कम एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 साल, और ये ग्रेट डिप्रेशन 1930 और वो जंग अजीम के बाद वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मुआशी धचका दुनिया को पहुंचा है। इसार राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी ज्वाइन किया, डॉक्टर इजाज़ अहमद हमारे साथ थे कार्डियोलॉजिस्ट न्यूयॉर्क से, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सामिन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुँचता है, असद हसन को इजाज़त दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
www.v